आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद शुरू होते ही फिर हंगामे की भीड़ चढ़ गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के शोर शराबे के कारण विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही 3:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज पक्ष विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। सबसे पहले दिन के 12:30 बजे तक के लिए और दूसरी बार भोजनावकाश तक के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को नजरबंद करने और सूर्या हांसदा की फर्जी मुठभेड़ की घटना को नोटिस के जरिए सदन में उठाते हुए चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार के असहमति जताने पर सदन में हंगामा होने लगा। इसके बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त वर्ष 2023-24 का सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश किया और भाजपा विधायक राज सिन्हा ने चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक बजट का कटौती प्रस्ताव लाया। सत्ता पक्ष ने भी 130वें संविधान संशोधन का विरोध किया। सूर्या हांसदा के एनकाउंटर मामले की जांच करने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की 8 सदस्यीय टीम गोड्डा पहुंची है। टीम ने पीड़ित परिवार से मिलकर जानकारी ली और घटनास्थल का भी दौरा किया। टीम का नेतृत्व कर रही डॉक्टर आशा लकड़ा ने परिवार के लोगों के साथ मुलाकात के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े किए।
एसपी और डीसी के साथ हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने जो रिपोर्ट हमें दिए हैं उस रिपोर्ट पर हमने जानकारी मांगी है। टोटल उन्होंने बताए हैं 25 FIR हुए हैं, वो भी हमने मांगा है, और FIR में कितने FIR का चार्जशीट दाखिल हो गया है इसके बारे में जानकारी हमने मांगा है। जो SIT की टीम बनी थी में कौन कौन लोग गए थे वो हमने डिटेल मांगा है। उसके बाद आगे का कार्रवाई आयोग अपना करेगी, पुलिस अपना जांच करेगी, उनका न्याय के लिए आयोग हर संभव काम करेगी।
मॉनसून सत्र समाप्त होने के बाद हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की हठधर्मिता के कारण संसद के मॉनसून सत्र में अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं हो सका। श्री जायसवाल ने ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 को काफी सार्थक पहल बताया।
यूथ के लेकर के ये बहुत बड़ा बिल समय पर आया है। बहुत सारे आत्महत्याएं हो रही थी, बहुत लोगों का बिल्कुल जो फाइनेंशियल कंगालेपन की तरफ लोग बढ़ रहे थे, और ये एक हैबिट फॉर्मिंग चीज होता है, जुआ नशा के तरीके से होता है। तो अगर ये बैन हो जाता है तो यहाँ के युवाओं को इससे बहुत लाभ।
भारतीय स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय औद्योगिक भागीदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से रांची में ईस्ट टेक 2025 पूर्वी टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन कल किया जाएगा। यह कॉन्क्लेव रांची के दीपाटोल स्थित क्रिकेटा ऑडिटोरियम में होगा। कार्यक्रम में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले के एकलव्य विद्यालय में जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता अन्य सरकारी विद्यालयों से बेहतर मिल रही है, और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है जनजातीय इलाकों में संचालित एकलव्य विद्यालय। एकलव्य आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में सभी आवश्यक सुविधाएं मुफ्त में प्रदान की जाती है। खूंटी के रेवा में स्थित एकलव्य विद्यालय में खूंटी, मुरहू, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, रांची के विद्यार्थी भी शामिल है। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि एकलव्य आवासीय विद्यालय जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त शिक्षा केंद्र बन गई है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
लोहरदगा जिले में खेत में काम कर रहे एक किसान की मौत करंट लगने से हो गई। किसान खेत में काम कर रहा था और पास में ही विद्युत प्रवाहित 11,000 वोल्ट का तार टूट कर गिरा हुआ था। काम करते करते किसान तार की चपेट में आ गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2024 के लिए नामांकन आमंत्रित किया है। नामांकन 30 सितंबर तक ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। यह पुरस्कार युवाओं को राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहित करने तथा स्वैच्छिक संगठनों को उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।